نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان الذي أسرى. 15वां पारा है, सूरत बनी इसराइल के आगाज से शुरू करेंगे. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ये थी आयत नंबर एक सूरत बनी इसराइल. इसका उन्वान है मेराज, फिर स्लैश डालेंगे, उम्मत की तब्दीली की इलामत. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में अल्लाह के दीन का काम करते हुए 10 साल गुजर गए थे. हालात इतने सख्त हो चुके थे कि चारों तरफ से अंधेरे ही दिखते थे. आपके दो प्यारे सहारे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी चहेती बीवी भी थी, और अबू तालिब जो आपके चचा थे, जो दोनों ही दीन के रास्ते में आपके बहुत बड़े मुआविन थे, यके बदीकरे कुछ महीने के फर्क से दुनिया से चले गए. ये वो वक्त था कि अल्लाह के नबी सल्लम बहुत ज्यादा गम के अंदर थे, कि इस साल को आमुल हुजन भी कहा जाता है. आपने सोचा कि चले यहाँ से निकल के ताइफ चलते हैं, हो सकता है कि वहां से कोई अच्छी उम्मीद मिल जाए, क्योंकि जब एक जगह वाले लोग नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला उसको दूसरी जगह ले जाता है. लेकिन ताइफ में जो हालात पेश आए वो मक्का वाले हालात से भी अबतर थे. वो भी इंशाल्लाह आगे कहीं जिक्र आएगा तो हम देखेंगे. उस वक्त जब अल्लाह के नबी सल्लम गम और हुजन के अंदर मुब्तला थे, हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लम को एक ऐसा अछूता सफर करवाया कि जिसकी मिसाल दुनिया में कभी नहीं मिलती. इस सफर के दो हिस्से थे. पहला हिस्सा बैतुल्ला से बैतुल मकदस तक था, इसको असरा कहते हैं, यहाँ इसी का जिक्र है. उसके बाद दूसरा हिस्सा बैतुल मकदस से सातवें आसमान तक था, उसको मेराज कहते हैं, जिसका जिक्र सूरत नजम में आएगा. इस सफर के अंदर जो चीजें थी उसी को हम सिर्फ यहाँ चंद बातों को देख लेंगे, ताकि फिर बाकी बातों को वहां देखें. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रात पहले फरिश्ते आए और उन्होंने आपको देखा और आपके बारे में बातचीत की, पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिसके लिए ये सफर अब होगा. फिर उसके बाद आपका दिल मुबारक धोया गया. ये दूसरा मौका था आपके शक सदर का, कि आपका सीना चाक किया गया, उसको जमजम के पानी के साथ धोया गया, हिकमत डाली गई, क्योंकि जो मनाजर आपको दिखाए जाने थे वो आम इंसान नहीं देख सकता. बहरहाल उसके बाद फिर अगली रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बुराक की सवारी पे आपको सवार करके बैतुल्ला से बैतुल मकदस ले गए. इस दौरान रास्ते में आपको कुछ मनाजिर दिखाए गए. आपने खजूरों की एक जगह देखी, आपको जिब्राइल ने कहा कि आप उतर के यहाँ दो नफिल पढ़ लीजिए, ये आपका महजर होगा. उस वक्त तक आपको नहीं पता था, लेकिन अब हिजरत का सफर करीब था. आपने दो नफिल पढ़े, गोया कि आपको पहले से मदीना दिखा दिया गया कि आपको यहाँ आना है. फिर उसके बाद आगे आप गुजरे, आपको मदीन की बस्ती दिखाई गई, मुख्तलिफ अंबिया कराम की जगह दिखाई गई, रास्ते में कुछ जन्नत और जहन्नम के मनाजर भी आपने देखे थे. उसके बाद फिर आपको बैतुल मकदस लाया गया. आपका बुराक जो था वो उस पत्थर के साथ बांधा गया जहाँ आपसे पहले के अंबिया कराम जो थे उनकी सवारियां बंधा करती थी, और वहां फिर पिछले तमाम अंबिया कराम मौजूद थे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इमामत करवाई और सबने आपके पीछे नमाज पढ़ाई. बैतुल्ला से बैतुल मकदस तक का सफर असल में एक उम्मत की तब्दीली का सफर था. अब अल्लाह के नबी सल्लम का सामना मदीना में यहूद के साथ होने वाला था, जो उससे पहले अल्लाह की चुनी हुई कौम थी. अल्लाह ने उनको वही पैगाम दिया था जो आज के मुसलमानों को दिया. जब उन्होंने उसकी नाकदरी की, अल्लाह ताला ने उनसे ले लिया, तो लिहाजा सारे अंबिया कराम का आपके पीछे नमाज पढ़ना एक इस्तियारा था, एक सिम्बल थी इस चीज की, कि अब इमामत जो है बदलने वाली है. लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पे तमाम अंबिया कराम के सरदार बने, इसीलिए आपको सैयदुल मुरसलीन का लकब भी मिला. इन आयात में असल में इसी का तज़किरा है. अल्लाह ताला ने यहाँ जो बताया कि इस वाक़े मेराज का या असरा का मकसद क्या था, लिनुरियहु मिन आयातिना. अल्लाह ताला ने नबियों को इंसानियत की हिदायत के लिए चुना होता है, और जो शख्स हिदायत के मनसब पे फायज हो उसके लिए फर्ज है ये कि वो दूसरों से ज्यादा इल्म हासिल करे, उसने उस चीज को अपनी खुली आंखों से देखा हो जिसकी तरफ वो दूसरों को दावत दे. अल्लाह के नबियों को ऐसे वाक़ियात दिखा के उनके इल्मुल यकीन को ऐनुल यकीन में बदला जाता था, कि आप गम ना करें, जो बातें आपने लोगों को बतानी है वो आप अपनी खुली आंखों से देख लें. इसके लिए अल्लाह ताला ने बैतुल्ला से बैतुल मकदस को भी क्यों चुना, इसलिए कि बैतुल मकदस फलस्तीन वो जगह थी जहां आपसे पहले के तमाम अंबिया कराम जो थे वो मौजूद थे, और क्यामत से पहले यही जगह दुनिया में पुरअमन जगह होगी, और बाज रिवायात में तो मैदान महशर भी यहीं पे बका होगा. तो लिहाजा इस आयत का बगली आयतों से ताल्लुक है, उसको हम देखेंगे तो कुछ मजीद बात आप समझ सकेंगे इंशाल्लाह. वातीना मुसलकित الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا اور وہ بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں صاف صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست قسم کی زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس آئیں، اور جس جس چیز پر قابو پائیں اس کو توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 2 سے 8، 2 to 8، ان کا عنوان ہے یہود کی تاریخ میں مسلمانوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ کہنے کو یہ صرف 6 آیات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کور کیا۔ میں ان ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے کوشش کروں گی کہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان لوگ تھے، جیسے آج ہم مسلمان لوگ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مسلمان بناتا ہے یا اس کو اپنے پیغام کے لیے چنتا ہے تو ان کے لیے ایک لائحہ عمل ہوتا ہے اور وہ اس وقت کی کتاب ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنے وقت کی کتاب پہ عمل کرنا چھوڑ دے یا اس کتاب کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں کرنے لگے کہ اللہ کا کلام اور انسانوں کا کلام جو ہے وہ مکس اپ ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا جب انبیاء کرام کے پیغام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دشمن کو بھیج دیا۔ اگر آپ میں سے کسی نے جیوش ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کے سامنے کچھ نام ہوں گے، بخت نصر اور ٹیٹس، یہ دو ایسے حکمران تھے جنہوں نے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پہلے بخت نصر کا حملہ ہوا، اس نے ان کا بیت المقدس تک اجاڑ دیا، تورات کے صفوں کو جلا دیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے ان کو فوت کر دیا گیا تھا، تیسرے پارے میں آپ پڑھ چکے، وہ تورات کے حافظ تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کا ایک ایسا دور گزرا کہ تورات کا نام نشان تک نہیں تھا، اور میں جب اس بات کو پڑھتی ہوں تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے کہ آج تو ہم مسلمانوں کے پاس کتاب بھی موجود ہے، زبر زیر کے فرق کے ساتھ بھی موجود ہے۔ 1920 کی تبدیلی نہیں، صرف ہمارا آج قصور کیا کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو کتاب ہدایت کی بجائے وظیفوں اور برکت کی کتاب سمجھ لیا، تو آج امت کا حال دیکھیں گے۔ تو ذرا سوچیے اس وقت بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب ان کی کتاب ہی نہیں تھی، کتنے سال رہے۔ پھر جب 100 سال فوت رہنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے، انہوں نے اپنے حافظے سے تورات لکھی، اللہ نے ان کو پھر ریوائول دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام آئے، جب قوم کوئی ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ بھی اس کے حالات ٹھیک کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، کچھ کچھ ٹھیک رہے، اثر تھا اس ساری تکلیفوں کا جو بخت نصر کے ہاتھ ہوئی، دوبارہ انہوں نے پھر حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر ٹیٹس نے حملہ کیا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس طرح یہ تاریخ کے اندر 2 دفعہ تباہ کر کے دوبارہ اٹھائے گئے، اور اس کے بعد آج تک یہ اس طرح سے نہیں سنبھل سکے جیسے سنبھلنا تھا۔ سورت پیچھے ہم پڑ چکے کہ آج بھی اگر ان کا غلبہ ہے تو چند بڑی طاقتوں کے سہارے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہسٹری کیوں سنائی؟ اس کا واقعہ اسراء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو سفر کروایا اور اس کے ناطے سے یہ چیز بتا دی کہ دیکھو، اگر جو کام بنی اسرائیل نے کیا اور ان کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہوا، اگر آپ کی امت یہ کرے گی تو یہی ہوگا۔ اللہ کے قانون بے لاگ ہے۔ اللہ بہو اور بیٹی میں فرق نہیں کرتا، ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتا کہ بہو ایک کام کرے تو پکڑی جائے اور بیٹی وہ کام کرے تو پکڑی نہ جائے، بیٹا ایک کام کرے تو اس کو تو پچکار دیا جائے اور بیٹی وہ کام کرے تو اس کو ڈانٹ دیا جائے۔ اللہ کے یہ فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کیا کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ آپ آیت کو ہائی لائٹ کریں گے، آیت نمبر 7 کے اندر، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، अगर तुम अच्छा करोगे तो इसका फायदा तुम्हें मिलेगा, वही नसा तुम फलाहा, फिर बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए। ये वो जामे असूल है जो हमें इनायात में दे दिया गया, जिसकी बुनियाद पे आज हम में से हर एक जो है अपने अपने अमाल को देख कर अपने मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट कर सकता है। हम कहते हैं कि हमें नहीं पता कल क्या होगा हमारे साथ, लेकिन हम अपने अमाल के आईने में देख सकते हैं कि कल हमारे साथ क्या होगा। बनी इसराइल के जो फोर फादर्स थे उनकी सजा उनकी नस्लों ने पाई, और वाकई फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 300 साल के बाद जब उनके यंगस्टर उठे उनके अंदर गलबा आया और अल्लाह ताला ने फिर उनको दोबारा उठाया। आज के दौर में ऐसा लगता है कि इस्लाम के साथ भी यही तारीख दोहराई जा रही है। पिछले 300 साल से हम सो रहे हैं। इस वक्त सो के उठने वाला बंदा जैसे अपनी चीजों को ढूंढने लगता है ना, मेरी ग्लासेस किधर है, मेरी घड़ी किधर है, मेरी जूती किधर है, इस तरह उम्मत भी उठ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उठ के अब आप कुरान और सुन्नत को टटोल रहे हैं किधर है। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ताला उम्मत दोबारा उभरेगी, लेकिन याद रखिये जितनी दफा गलती करेंगे उतनी दफा उसकी सजा भुगतेंगे। सजा भुगतने के बाद जब रुजू इल्लाह हो जाता है, जब लोग अल्लाह के हुक्मों की तरफ चलने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला उनके हालात को बदल देता है। हम सबके लिए इसमें बहुत बड़े सबक है, बहुत बड़े सबक है। और वो सबक कहाँ से लेना है, उसका तज़किरा अगली आयत में है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम फयुबश्शिरुल मुमिनीन। यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है, और ईमान वालों को जो नेक अमाल करते हैं इस बात की खुशखबरी देता है कि इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। वन्नल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरा, और ये कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ये थी आयत नंबर 9 से 10। इसका उनवान हम लिखेंगे तौहीद सबसे बड़ी सदाकत, और दूसरा टॉपिक भी आप इसका लिखेंगे फितनों के दौर में थामने वाली चीज़ अल्लाह की किताब। ये है जवाब पिछली आयत का। आज अगर उम्मत उभरना चाहती है, आज अगर उम्मत चाहती है कि वो पिछली गलतियों का खमियाजा भुगतने की बजाय अब माफी की रविश पे आए और मुसलमानों के हालात संवरने लगे, तो उसके लिए उनको इस किताब को पकड़ना पड़ेगा। ये वो किताब है कि जो इंसान को अल्लाह के एक होने का यकीन दिला के अल्लाह के मालिक कायनात होने, खालिक कायनात होने, अहकमुल हाकिमीन होने का यकीन दिलाती है। और नतीजा क्या निकलता है कि इंसान फिर अपनी जिंदगी के लिए जिस चीज को कबूल करता है वो अल्लाह की हिदायतें होती हैं। जब कोई इंसान या इंसानों में से कोई गिरोह जब अल्लाह की किताब को हिदायत की किताब समझने की बजाय इंसानों से हिदायतें लेने लगता है, तो अल्लाह ताला को गजब आता है। आप सिर्फ इसकी छोटी सी मिसाल समझ सकती हैं कि हम सब खवातीन कितने से घर की मालिक हैं। किसी का 2 कमरों का घर है, किसी का 3 का होगा, किसी का 4 का होगा, किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास 1 भी नहीं होगा। हमारी छोटी छोटी सल्तनत है ना। क्या कोई खातून ये पसंद करती है कि उसके बनाए हुए और सजाए हुए घर में कोई बाहर का बंदा आके तब्दीली करे कि ये कुर्सी यहाँ नहीं वहां होनी चाहिए थी, ये आपने यहाँ क्यों रखा, उसको वहां रख दे, और खास तौर पे वो आए जो जबरदस्ती करना चाहे। कितने घरों में झगड़े सास बहू के सिर्फ इस वजह से होते हैं कि जो तस्वीर पिछले 30 साल से दीवार पे लटकी है तुमने उसको उतारा क्यों, जो डोंगा मैंने आज तक नहीं फेंका तुम्हें क्या जरूरत हुई फेंकने की। ये क्या है, हर इंसान अपनी जात को, अपने घर को अपनी अथॉरिटी समझता है। ये तो हम कमजोर इंसान है जिन्होंने एक वक्त आना है छोड़ के ही जाना है। जिंदगी में भी तो काम कर नहीं पाते, एक वक्त ऐसा भी कमजोरियों का आता है, चीजें सामने बिगड़ रही होती हैं, लेकिन इंसान सब्र के गुण भर सकता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं। आप सोचिए कि हम इतने कमजोर इंसान हो के अपनी चीजों में तब्दीली ना चाहें, तो अल्लाह सुबहान तआला जो मालिक कायनात है, जो इस पूरी दुनिया को बनाने वाला, क्या फिर वो हमें इस चीज की इजाजत दे सकता है कि जिसका जो दिल चाहे वो काम करे, जो दीन के नाम पे करना चाहे, जो दुनिया के नाम पे करना चाहे। कोई किसी चीज को फलाह की जरिया बना ले, कोई किसी चीज को कामयाबी का जरिया बनाए। ऐसे लगता है कि अल्लाह सुभान ताला ने हमें एक ऐसी चीज पकड़ा दी कि जो सोने की चाबी है, कि जिससे खैर निकल सकती है, और वो अल्लाह का ये कलाम है। यकीन करें आज भी उम्मत के हर इंसान के हाथ ये किताब उस तरह आ जाए कि उसको अपनी किताब लगे, उसको इसके एक एक लफ्ज की समझ आए, तो यकीन करें 2-3 साल की देर है पूरी उम्मत की हालत बदल सकती है। ये हम है जो लोगों की बेटियों को कटवा रहे हैं, ये हम है जो मुसलमानों पर जालिमाना हमले करवा रहे हैं, क्योंकि हम जितनी देर से इस किताब को पकड़ेंगे हम मुसलमानों की इज्जत और बुलंदी को उतना डिले करते जाएंगे। आप अपनी इनफरादी जिंदगी में ये महसूस नहीं करती, जब आपकी जिंदगी में किताब आती है तो आप महसूस करते हैं ये 2 साल पहले क्यों नहीं आ गई, ये 3 साल पहले क्यों नहीं आ गई, मैंने अपने 10 साल क्यों जाये किए। आप में सक्सेस शेयर करते रहते हैं ये बातें, जिस तरह इनफिरादी जिंदगी में दिन ब दिन आप देर से पकड़ते हैं ना, तो आपकी हिम्मत कम हो चुकी होती है, आपकी ताकत कम हो चुकी है, आपकी ग्रिप कम हो चुकी। इसी तरह याद रखिए कि जब हम उम्मत मुस्लिमा को इसके जवाल पे छोड़ देते हैं और मुसलमानों को और ज्यादा पीछे जाने देते हैं, तो उतना इसको वापिस आने में ज्यादा टाइम लगेगा। हर बंदा अपनी जिंदगी गुजारते हुए जरूर यह सोचे कि मेरे इस अमल का मेरी उम्मत पर क्या असर आ रहा है। हम में से हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। अगर हम कोई गलत गलत काम करते हैं तो उसकी सजा में हमें नहीं मिल्लत को भी कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा इस शऊर को बेदार करने वाली ये किताब है। अल्लाह से दुआ करें कि ये किताब जीते जी हमारी जिंदगियों में हमारे हाथों में खुल जाए, और ऐसा ना कि हमारे बात लोग इसको पढ़ पढ़ के तो भेजे लेकिन हमें उसका एक लफ्ज भी समझना है। वयदुल इंसान बिश्शरी दुआ अहू बिल खैर, और इंसान बुराई की दुआएं मांगने लगता है बिल्कुल इसकी अपनी भलाई की दुआ की तरह। इंसान है ही बड़ा जल्दबाज, हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानियां बनाई हैं। रात की निशानी को तो हमने बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन बना दिया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और इसलिए भी के बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको, और हर हर चीज को हमने खूब तफसील से बयान फरमा दिया है। ये है आयत नंबर 11 से 12, 11 to 12। इन आयतों का उनवान है तारीकी से गुजरे बगैर रोशनी तलब करना जल्दबाजी है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। बज़ाहर लगता है कि आयात कौनिया का जिक्र है, आफाकी आयतें हैं, सूरज चांद के आने और जाने की बात है, लेकिन देखा जाए तो ये उम्मतों के अरूज और जवाल की कहानी है। रात और दिन का आना और जाना हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है, और वो क्या कि अल्लाह के इस कानून में अंधेरे से गुजरे बगैर रोशनी पा नहीं सकता इंसान। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन सिखाई, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सिखाया, लेकिन यहाँ ये बात भी सिखा दी कि वो लोग जो अंधेरों से डरते हैं और जो हर वक्त रोशनियों के तालिब रहें, ऐसे लोगों को फिर इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया की तलाश करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान जो ये कहे कि गम न आए और सिर्फ खुशियां रहें, बीमारी ना आए और सिर्फ सेहत रहे, मेहनत ना करनी पड़े और सिर्फ इनाम मिल जाए, कुछ किए बगैर मैं कुछ करवाने वाला बन जाऊं, तो वो शख्स उजलत पसंद है, वो जल्दी चाहने वाला है। अल्लाह ताला ने ये जो बात कह दी कान अल इंसान अजूला, कि इंसान जल्दबाज है, और आप अमली जिंदगी में देख लीजिए कि इंसान उस बेलने से गुजरना तो चाहता नहीं है कि जिससे बेलने के बाद रस निकलता है। आपने कभी गन्ने से रस निकलता देखा होगा? गन्ने को अपनी हस्ती तोड़नी पड़ती है फिर उसके अंदर से जूस निकलता है। कोई गन्ना कहे कि मैं बेलने के अंदर ना जाऊं और मेरा रस भी लोग पी लें, कभी फायदा नहीं होगा। इसी तरह वो इंसान जो लोगों को खैर देना चाहते हैं, जो वाकई अपनी जिंदगी को कारामद जिंदगी बनाना चाहते हैं और वो कब्र को ठंडा करना चाहते हैं, उनको इस दुनिया में अपने आप को पेश करना पड़ेगा कि किसी बेलने में डले ताकि उससे रस निकले और वो रस उनको फायदा दे। हमने पिछले पारे में शहद की मक्खी का काम देखा कि कितनी मेहनत करती है और किस तरह से भाग भाग के लाखों मील चलती है जिंदगी में, फिर चंद कतरे शहद हमें देके जाती है। अगर हम भी पिछले दौर के लोगों को देख लें जिन्होंने मेहनतें की, आज उनके फल हम पा रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से लेके बाकी तमाम मुहद्दिसीन की जिंदगी को पढ़ के देखिए, बचपन में चंद चंद साल 10-5 साल का इनकी माओ ने इनको छोड़ा था और सारी जिंदगी इल्म सीखते सीखते आखिर में कुंदन बन के आए। एक शख्स इमाम रबी है, आपने शायद उनका कभी नाम सुना हो। तो उनके वाले जो थे ये बिल्कुल अभी खुद बच्चे ही थे या गालिबन अभी पैदा भी नहीं हुए थे, किसी वजह से ये चले गए कहीं, कुछ पैसे अपनी बीवी को देके गए। उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ, वो माँ जो थी वो इतनी समझदार थी, उसने शौहर की कमाई को इतनी इख्तियार से इस्तेमाल किया, इस बच्चे की तरबियत की। जब ये बच्चा बिल्कुल जवान हो गया उसके बाद वो बाप एक दिन शहर में आए, तो घर में आने से पहले किसी मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ देखा कि एक स्पीकर बहुत ही अच्छा आवाज फरमा रहे हैं। बहुत ही खुशी हुई सुन के, कहा इसके माँ बाप कितने खुशकिस्मत होंगे। खैर उसके बाद घर गए, दरवाजा खटखटाया, बीवियाँ अच्छी थी, वफा शुआर थी उस दौर की बीवियाँ, आज की होती तो कहती कि आ गए आज तुम मुझे देखने। खैर बीवी ने उसको वेलकम कहा, बैठे बात हुई तो कहने लगे अच्छा ये बताओ कि वो जो पैसे मैं तुम्हें दे गया था उसका हिसाब दो। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा अच्छा हिसाब दूंगी, आप फिक्र ना करें, अभी थोड़ी देर रुक जाएं, अपने बेटे को तो मिल लें। और जब बेटा सामने आया तो वो वही इमाम था जिसको मस्जिद में तबलीग करता और बात करता देख गए। कहने लगी कि ये है आपके उन पैसों का हिसाब, मैंने आपके एक एक पैसे को आपके बच्चे की तरबियत पे लगाया। इसको देख के उनका दिल खुश हो गया। आप देखिए कि जब इंसान किसी चीज के ऊपर अपनी एफर्ट्स लगाता है तो फिर उसका फल पाता है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वह कब्र के अंधेरों में जाने से पहले इस दुनिया को कुछ रोशनी दे जाए तो फिर उसको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत फिर या तो इंसान अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइशों पे सब्र करके या फिर खुद को मुश्किल में डाल के। देखिए दो तरह के जरर होते हैं, दो तरह की मुश्किलात होती हैं, एक होती है इस्तरारी और एक होती है इख्तियारी। इस्तरारी मुसीबतें कौन सी होती हैं? जो हम पे आ जाती हैं, हम बीमार होना नहीं चाहते फिर भी आ जाती हैं, हम नहीं चाहते हमारे माल में कमी हो फिर भी आती है, कोई नहीं चाहता कि उसको बच्चों की तरफ से तकलीफ हो, शौहर की तरफ से हो, घर वालों से, फिर भी आती। ये इस्तरारी है, मतलब मजबूर किए गए, वी आर फोर्स टू डू दिस, उस पर सब्र करना है। लेकिन एक सब्र होता है, एक मुसीबत होती है जो इख्तियार से बंदा कबूल करता है। इल्म का रास्ता जो है ना, ये इख्तियारी सबर का रास्ता है। हम खुद पेश करते हैं अपने आप को। अल्लाह के दीन का रास्ता, कोई भी काम आप देखिए कि जो लोग इंसानियत के नफे का काम कर रहे हैं वो इख्तियारी मुश्किलात में पड़े हुए हैं, उनको भी मजा आता है सोने में बिस्तरों में, लेकिन आप देखिए लोग आधी आधी रात को जाग रहे होते हैं। दुनिया की जो तरक्की हो रही है, ये इन्वेंशंस हो रही है, जो आप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, आपका ख्याल है ये सोते हुए लोगों के काम है, ये जागती हुई कौमों के काम है। ठीक है, वो दुनिया के काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको दुनिया में फायदा दे रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं सबक लेने के लिए कि बंदा अपने लिए एक फैसला करे कि क्या मुझे अपने आप को इख्तियारी तौर पर पेश करना है ताकि फिर अल्लाह ताला मेरे से कोई खैर निकलवा दे, या फिर मुझे जल्दबाजी के साथ इस दुनिया से गुजरना है और अंधेरों की बजाय सिर्फ रोशनियों को लेने की बात करनी है। पीछे फिर कौमों की बात है, कौमों के ऊपर जब अजाब आते हैं तो अल्लाह ताला उनको बाज दफा इस्तरारी मुसीबतों में डाल देता है और बाज दफा इख्तियारी मुसीबतों में डाल देता है। जब कोई कौम इख्तियारी तौर पर अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को पेश नहीं करती ना, तो अल्लाह इस्तरारी तौर पर पेश कर देता है। फिर दुश्मनों को कहते हैं इनकी ईंट से ईंट बजा दो, और यही कल यहूद के साथ हुआ, यही आज जो है मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये तो कौमों की बात थी, अब अल्लाह ताला इनफरादियत की बात करते हैं, और वो क्या, वकुल इंसान अलज़मनाहु तायरहू फी उनुकी फनुख्रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यलक़ाहु मंशूरा। हमने हर इंसान की भलाई और बुराई को उसके गले में लगा दिया, और बरोज क़यामत हम इसके सामने इसका नामे आमाल निकालेंगे जिससे वो अपने ऊपर खुला हुआ पाएगा। ले खुद ही अपनी किताब आप पढ़ ले, आज तो तू आप ही अपना हिसाब लेने को काफी है। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो राह रास्त हासिल कर लेगा वो खुद अपने ही भले के लिए राह याफ्ता होता है, और जो भटक जाए इसका बोझ उसी के ऊपर है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देगा, और हमारी सुन्नत ही नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही हम अजाब देने लगे। ये थी आयत नंबर 13 से 15, 13 to 15। इसके उन्वान लिखेंगे हम, किस्मत सितारों और चिड़ियाओं के हाथ में नहीं, आमाल के साथ मुंसलिक है। हर दौर में लोगों ने किस्मत मालूम करने के लिए कभी तो सितारों की बात की, आजकल तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, आजकल आपका सितारा बड़े अरूज पे है। आज भी देखिए इस पढ़े लिखे दौर में भी लोग जो हैं बाज दफा सितारों से किस्मत मालूम करते हैं, पामिस्ट्री और होरोस्कोप और इस तरह की चीजों को आप देख सकते हैं। और दुख की बात यह है कि मुसलमानों के जब मैगजीन्स के अंदर इस तरह के सफ़े छपे कि जिसको लोग इस शौक से पढ़े कि शायद इतने शौक से वो कुरान को भी ना पढ़े, तो ऐसे लोग जो है असल में इसी बात की दलील दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी किस्मत को सितारों के हाथ में रखा। इसी तरह दौरे जाहिलियत में लोग चिड़ियों को और परिंदों को उड़ाकर किस्मत के हाल मालूम करते थे, फाल निकालना जिसको कहते हैं। कोई काम करना होता तो परिंदे को उड़ाते, अगर वो दाईं तरफ चला जाता तो कहते ये काम अच्छा है, और अगर लेफ्ट साइड पे जाता तो कहते ये काम बुरा है। अल्लाह ताला ने बताया तुम्हें मैं बताऊं कि तुम्हारी किस्मत किसके हाथ में है। हम अगर इस अगली बात को सुनने से पहले एक और चीज सोच लेते हैं कि हमारी किस्मत उसके हाथ में, और वो क्या है, लोगों की बददुआएं। फुलां की आह लग गई, फुलां की बददुआ लग गई, फुलां ने मुझे ये कर दिया। हालांकि हकीकत क्या है कि हम में से हर एक अपने आमाल की जद में है, जो आज करते हैं वो कल हमारे साथ होने लगता है। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, ये कायनात का मामला है। इसी को कुरान पाक में दूसरी जगह वमा असाबकुम मिन मुसीबतिम इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम कहा कि तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है ये तुम्हें अपने ही हाथों के किए धरे से पहुंचती है। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हम आज अगर अच्छा कर रहे हैं अल्लाह दुनिया में दिखाता है। बहुत सारे अमाल को तो अल्लाह ताला ने आखिरत पे डाल दिया कि हम अच्छा करेंगे तो उसकी जजा वहां पाएंगे, बुरा करेंगे तो उसकी सजा वहां पाएंगे, लेकिन कुछ अमाल खास तौर पर हदीस में भी आते हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला आखिरत का इंतजार नहीं करता उसकी सजा दुनिया में देता है। उसमें माँ बाप की नाफरमानी, कतई रहमी और इस तरह की सरकशी और बगावत वाली चीजें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे एक दर्स मौजूद है किताब जिंदगी, ये इन्हीं आयात पे था, और शायद मैंने अपनी जिंदगी में 20 से 25 दफा या इससे भी ज्यादा इस पे दर्स दिया है। लेकिन हकीकत है कि जब इन आयतों को पढ़ो वाकई महसूस होता है कि हम कहाँ हैं। ऐसी लगता है कि जैसे हम सब एक किताब लिख रहे हैं। आप में से किसी को अगर बचपन में डायरी लिखने का शौक हो तो उस तसव्वुर को जहन में लाइए, उठते बैठते एक एक चीज लिख रहे होते हैं, मैं यहाँ गई, मैं वहां गई, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया। इसी तरह की एक डायरी हमारी फरिश्ते भी लिख रहे हैं। हर दिन जब सुबह होती है तो उस किताब जिंदगी का एक सफा खोल दिया जाता है, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल आज सुबह भी हमें मिला था, बिल्कुल प्लेन। अब उसमें सारा दिन हम लिखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या इरादे हैं, दूसरों के लिए क्या सोच रहे हैं। कुछ का तो सो सो के गुजर जाता होगा, कुछ का घंटों टेलीफोन टॉक पे लिखा जाता होगा, किसी का सारा दिन किचन में खड़ा होना लिखा जाता होगा, किसी का अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ता होगा। इस तरह पूरा दिन वो सफा लिखा जाता है। तसव्वुर में लाया करें, बिल्कुल प्लेन पेपर फरिश्ते लिख रहे हैं, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। सूरह इन्फितार में अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे ऊपर तो लिखने वाले हैं, तो वो तो तुम्हारी एक एक चीज को लिख रहे हैं। सूरह काफ में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीब नतीद। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकलता है तो उसको लिखने वाले फौरन लिख लेते हैं। अब इस शऊर के साथ आप सोचें कि जब बंदे की हर बात लिखी जाए या नोट की जाए तो वो कितना कॉन्शियस होता है। इसकी दलील तो आप उसी वक्त देख लेते हैं कि जब आप बोलते हैं तो माशाल्लाह खूब बोल रहे होते हैं, और आपको कहा जाए कि लाइए जरा ये माइक में बोलिए तो घुग्गी बंद हो जाती है, और किसी को यकीन हो जाए ना कि उसकी रिकॉर्डिंग होती है तो यकीन करे वो बहुत मुहतात बोलता है। और जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं अल्लाह की बना, जो लोग हमारे लेक्चर्स एडिट करते हैं ये उनकी मेहरबानी है कि वो कर देते हैं, शुरू में मैंने भी कोशिश की थी, वो 1 घंटे का लेक्चर 15 मिनट का रह गया, मैंने अपनी इतनी गलतियां निकाली। आप जितनी क्रिटिकली अपने आप को देखते हैं उतना कोई सुनता नहीं। और बाज़ लोग माइक पे आके बात करते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ देखिए आपने जो 10 मिनट बात की है ना, अगर आप इसकी एडिटिंग करेंगे ना इसमें 1 मिनट 2 निकलेंगे सिर्फ। हम एक बात को इतनी दफा दोहराते हैं और एक ही बात को घुमा घुमा के करते हैं, लेकिन यकीन करें जब इस बात का एहसास कि दूसरे हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बंदे को इतना मुख्तात कर देता है, तो जरा सोचिए कि जब फरिश्तों की रिकॉर्डिंग का ख्याल आने लगे तो क्या फिर इंसान नाफरमानी की तरफ एक कदम भी एक्स्ट्रा डालेगा, क्योंकि ये लिखा जाएगा। ये बात आगे आएगी इंशाल्लाह, और हम देखेंगे कि आज इस दुनिया में जो किताबें जिंदगी लिखी जा रही है मौत के दिन उसका आखिरी सफा होता है। हम में से किसी को नहीं बताता ये आखिरी दिन है, ऐसे ही कोई दिन होगा, सुबह होगी, हम अपने काम कर रहे होंगे, किसी का सुबह, किसी का दोपहर, किसी का मगरिब के बाद एकदम वो किताबें जिंदगी छिन जाएगी। और उस वक्त आप देखिए इंसान जितना चीहे जितना रोए, लौल आखरतनी लाजलिन करीब, मुझे क्यों थोड़ी सी मोहलत नहीं दी, लेकिन नहीं, 1 मिनट भी आगे नहीं, ला यस्तकदिमून असा, एक कदम आगे नहीं, 1 मिनट, 1 घड़ी आगे नहीं। कभी आपने एग्जामिनेशन हॉल में जब कभी गए और आखिरी मिनट आपकी भीख जो होती है एग्जामिनर से, प्लीज गिव मी मोर मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, और आखिर में अक्सर लाइन खिंचती है, लोग ले जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो सकता, इस तरह हमारी मौत की सूरत में हमारे ये छिन जाएंगे। होगा क्या, ये बंद हो गई, अब आप जो मर्जी लिख लिख के भेजें। जो लोग मरने वाले के बाद नेकियां कर करके अपने जोम में और कुरान पढ़ पढ़ के उनको भेजते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ कि ये बिल्कुल वही मिसाल है कि जैसे कमरा इम्तिहान से पेपर वापस छिलने के बाद घर आके कोई लिख लिख के वो सवाल आता एग्जामिनर को भेजे, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। इज़ामत अल इंसान इनकते अमलुहू, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब इंसान मर जाता है तो उसका नाम अमल मुनकते हो जाता है, इल्ला मिन सलास, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदे का जिंदगी का अमल होता है वो उसके बाद भी जारी रहता है, नेक औलाद, सदका जारिया, कोई इल्म उसने किसी को सिखा दिया। इसके अलावा आप जो मर्जी लिख लिख के मरने वालों के लिए भेजें उनकी किताबें जिंदगी बंद हो चुकी है। हाँ आप उन पे एहसान करें, आप उनको दुआएं दे सकते हैं, लेकिन लिख के भेजेंगे तो बस यही मिसाल जहन में रख लीजिए कि किताब छपने के बाद कोई मुसन्निफ कहे कि इसमें ये भी डाल दो, इसमें ये भी डाल दो, उसको उसके लिए नए एडिशन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब ये बंद किताबें जिंदगी खुलेगी कब, इकरा किताब कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, क्यामत के मैदान में जिस दिन रिजल्ट कार्ड मिलेंगे, रिजल्ट अनाउंस होंगे, उस दिन अल्लाह कहेगा आओ अब खुद पढ़ो। अब आप जरा सोचिए एक शख्स जो फर्स्ट आए वो तो खुशी खुशी इसको पढ़ेगा, आगे हम सूरत अल हाका में पढ़ेंगे, हाउ मुकरो किताबिया अन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, लेकिन जो फेल हो जाएगा उसको कहा जाए कि जरा सबके सामने ऐलान करो, घर से तो सारों को साथ लाए हो अपनी ग्रेजुएशन के लिए, आज सबके सामने खड़े होकर बताओ कि मैं फेल हो गया हूँ। फिर इंसान कहेगा कि काश जमीन फटे और मैं उसके अंदर दबा जाऊँ, अल्लाह ताला क्यामत के दिन कहेगा तुम अपने हिसाब खुद बताओ, दुनिया में दूसरों के हिसाब लेते थे ना, आज खुद बताओ कि तुम कितने नंबरों से फेल हुए हो, कितनी महरूमी है। आप सोचिए कि एक तो बहुत ज्यादा नंबरों से फेल होता है ना शख्स, उसको तो पहले ही पता होता है उसने किया ही कुछ नहीं, वो तो इसी उम्मीद में है कि अल्लाह करे पेपर ही खो जाए और बगैर हिसाब के ही पास हो जाए, वो तो कहता है जंग ही लग जाए और अल्लाह करे ऐसे ही रिजल्ट पोस्टपोन हो जाए, उसकी तो कोई बात नहीं। काफिर का ये मामला है, उसने तो दुनिया में कह दिया मैं कुछ नहीं, ला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, आप सूरह काफ़ में पढ़ेंगे, काफिरों के लिए तो हम बैलेंस ही नहीं रखेंगे, वो तो बिला मुकाबला फेल है, वो तो फेलों में फर्स्ट है, उन्होंने तो दुनिया में एडमिट नहीं किया। मसला बदलेगा मुसलमानों के साथ, जिनको वहां चीखें निकलेंगी हाय 1 नंबर से रह गई, हाय 2 नंबर से रह गई, हाय 3 से रह गई। आप वो हसरतें सुना करें जो पोजीशन होल्डर्स की होती हैं, फ्यू परसेंटेज हाफ हाफ मार्क के ऊपर आपकी पोजीशन डाउन होती, वो हसरत आपको नहीं जाती, आप कहते हैं हाय वो कर लेती, फिर आपको याद आता है अच्छा ये सवाल गलत हुआ, इस वक्त घर में पार्टी थी और मैं क्यों बैठ गई उस वक्त, अगर मैं ये याद कर लेती मेरा ये सवाल ठीक हो जाता। ये है उस दिन की हसरतें, इसीलिए क्यामत के दिन को यौमुल हसरा कहा गया, इंसान को एक एक मिनट याद आएगा जो उसने जाया किया होगा। हदीस में आता है जन्नत में जाने वालों को किसी चीज पे और हसरत नहीं होगी सिवाय उन लम्हात के जो उन्होंने अल्लाह की याद के बगैर गुजारे होंगे, वो कहेंगे अल्लाह काश हम वो भी ना जाया करते बेकार तमाशों में, और आज जरा वो ऊपर की और जन्नत मिल जाती और नेमत मिल जाती। इंसान की तबीयत में खूब से खूब तर की तलाश है, इसी की बात यहाँ कर दी, मन इख्तदा फइन्नमा यख्तदी लिनफ्सी, जो हिदायत पाएगा उसका फायदा उसी को होगा, हाँ उसकी माँ को हो जाएगा, उसके उस्तादों को हो जाएगा, जिन्होंने उस रास्ते में उसकी मदद की उसको होगा, इसके अलावा मेरा फायदा आपको नहीं होगा। आपका फायदा मुझे नहीं होगा। और वो मन दल्ल फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, जो भटका जो रास्ते से गया फिर उसकी गुमराही उसके ऊपर, हमारी बला से जो भटक गया सो भटक गया। ला तज़िरु वाज़िरा तुम विज़्र उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी बोझ उठाने वाले का बोझ नहीं उठाएगा। आप सूरह फातिर में पढ़ेंगे कि अगर बेशक बोझ से लदा हुआ शख्स इंसान को पुकारे कि आओ मेरा थोड़ा बोझ उठा लो, नहीं उठाया जाएगा। तो हम सब के लिए ये चीज अल्लाह ताला ने सामने रख दी। इन बातों को सुन के हर बंदा अपना रास्ता मुंतखब कर सकता है। मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जा रही हूँ, ये जिंदगी जिसकी किताब मेरे हाथ में है, अगर आज मेरी आंखें बंद हो गई मेरे हाथ में है क्या? आज जिस तरह से जिंदगी पे मैं जी रही हूँ, आज मेरे ऊपर कामयाबी के जो तमगे लगे हुए हैं, क्या इनमें से एक भी मेरी कब्र में जाएगा? क्या इनमें से कोई भी चीज ऐसी होगी कि जो मुझे अल्लाह के यहाँ पास देगी? अल्लाह से दुआ है कि आज हम अपनी कामयाबियों और अपनी नाकामियों की सबसे बड़ी वजह अपने आप को गिरदाने। आज हाल क्या हो गया कि कोई नाकामी होती है तो सारी दूसरों के पल्ले में डाल देते हैं, और कामयाबी होती है तो उसका सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये आयत उसकी तरदीद करती है।